तुया आदर्शन ही गरल जारल दही चिर दिन तापित जीवन हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया नरोत्तम लैला शरण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की नित्यलीला प्रविष्ट जय ओं विष्णुपाद परमहंस श्री श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंद क्योंकि आज केवल श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के शुभ आविर्भाव तिथि ही नहीं है हमारे एक अति वरिष्ठ गुरुवर्ग श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के भी तिरुभाव तिथि है और श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी के भी तिरुभाव तिथि है लेकिन अभी तो हम लोग केवल श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करेंगे दोपहर में जो जानते से गोवर्धन में आज उनका फंक्शन हो रहा है गौर गोविंद महाराज जी के तो वहां उनके गुणगान भी होगा श्रीमद साउंड अच्छा श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद हमारे इस्कन के संस्थापक आचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के गुरुजी हैं उन्होंने अगर इस धरती तल पर न आते शायद ही हम लोग जैसे और लाखों को शुद्ध भक्ति क्या है पता ना चलता ना हम इस प्रकार के भक्तिमय जीवन में आ पाते भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद में उनके निज पार्षद गोस्वामीगण और उनके बाद में शुद्ध वैष्णव आचार्यगण श्री बलदेव विद्याभूषण पर्यंत वो शुद्ध भक्ति को तो बनाए रखे, लेकिन उसके बाद में सैकड़ों वर्ष पर्यंत इस शिक्षा को गंभीरता से लोग समझ नहीं पाए, कोई समझाने वाले नहीं रहे, तो कुछ स्वार्थी लोग उनको अपने अपने ढंग से प्रचार करने लगे और ऐसे समय आया, ऐसे दशा हुआ कि कोई संभ्रांत परिवार के लोग, कोई शिक्षित लोग गौड़िया के नाम सुनने से घृणा करने लगे। गौरनागरी आदि आदि किसी ऐसी प्रकार गौरांग महाप्रभु के शुद्ध शिक्षा को ऐसे अशुद्ध कर दिए, उसको आचरण से ऐसे कदर्थ कर दिए, भ्रष्टाचार फैलाए, जिसके कारण उसका लोप होने लगा। महाप्रभु की वाणी श्री श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर आ करके पूरे प्रयास किए जब उनको पता चला, लेकिन उनके अकेले में बस में नहीं था, तो उन्होंने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का समय था, तभी जब उन्हें मजिस्ट्रेट थे, तभी उनका अपॉइंटमेंट उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में था, मंदिर परिचालना कमेटी के उन्होंने देखे भी थे। उसी समय उन्होंने एक कलिजुग के अधिदेव श्री भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना किए कि हे प्रभु, अगर आपके शुद्ध शिक्षा को आप प्रचार करना चाहते हैं, दुनिया में रखना चाहते हैं, तो आप कोई एक ऐसे सहायता मुझे कीजिए, कोई ऐसे एक प्रचारक भेजिए, आपके कोई ऐसे एक पार्षद आपके भक्त भेजिए जिन्होंने इस धरती पर इस शुद्ध शिक्षा को बचाए रखे, ये प्रेम संपत्ति, ये शुद्ध भक्ति के भाव को रखे और प्रचार करे। तो उनके प्रार्थना से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर के उनको एक पुत्र संतान दिए। 6 फरवरी 1874 को सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की प्रकट होता है श्रीधाम जगन्नाथपुरी में, मंदिर के उत्तर पार्श्व में, जब भक्ति विनोद ठाकुर का नारायण छता नामक स्थान पर निवास था, तो वहीं पर उनके पत्नी भगवती देवी के गर्भ से इस सुपुत्र का प्राकट्य होता है। जन्म के समय में ऐसे कहा जाता है कि उनका जो नाल था वो भी उपवीत के तरह था उनके शरीर में, कंठी में तिलक के चिन्ह और मस्तक में तिलक के चिन्ह भी दिखाई पड़ा था। तो उसको देख करके केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने बोल दिए थे, बोले देवी, उनके पत्नी भगवती देवी को, ये पुत्र कुछ असाधारण पुत्र होगा, मैं प्रार्थना किया था जगन्नाथ जी को, ये उनके प्रसाद है। तो जब 6 महीना का हुए थे, अन्न प्राशन होता है, प्रथम अन्न खाते हैं, उनका नामकरण भी भक्ति विनोद ठाकुर किए, बोले कि जगन्नाथ जी के प्रसाद के अधिकारिणी सी विमला देवी है, उनने भंग कर तपस्या करके जगन्नाथ जी से वरदान प्राप्त किए, उनके प्रसाद सबसे प्रथम अधिकार श्री विमला देवी का है, बाकी हम लोग जो खाते हैं विमला देवी से प्रसाद आकर के तो महाप्रसाद नाम ग्रहण करता है, ठाकुर जी को जो भोग लग करके आता है वो प्रसाद होता है, तो इसी प्रसाद को कोई भक्त ग्रहण करता है फिर आता है तो क्या होता है, महाप्रसाद। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद और प्रसाद नहीं, महाप्रसाद इसलिए कहा जाता, बाकी जगह में प्रसाद, वहां महाप्रसाद। इसका कारण कि जगन्नाथ जी खाने के बाद में सीधा हमारे पास नहीं आता, वो जाता है विमला देवी के पास फिर आता है, तो इसलिए महाप्रसाद। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि मैं जो प्रार्थना किया था जगन्नाथ जी को, तो उनके प्रसाद के रूप से विमला देवी उनको दिए थे, इसलिए उनका नामकरण विमला प्रसाद किए, विमला देवी के प्रसाद है। तो 6 महीने के बाद में जब जगन्नाथ जी की प्रसिद्ध रथ यात्रा होता था, तो जगन्नाथ जी के रथ जाकर के उनके बड़दांड के सामने, आज जो चैतन्य गौड़ीय मठ आप लोग अधिकांश लोग जाते हैं पुरी में, वहीं रुकते हैं, वहीं उनके आविर्भाव स्थान है श्री चैतन्य गौड़ीय मठ पुरी में जो है, वहीं नारायण छता आश्रम था जहां पर मजिस्ट्रेट का रेसिडेंस था, वहीं पर उनका प्रकट हुआ था 1874 में। तो रथ जाकर के उनके घर के सामने वहीं रुक गया जगन्नाथ जी के, और चला ही नहीं, 3 दिन तक अथक प्रयास किया गया, रथ नहीं चला। तो क्योंकि उन्होंने परिचालना कमेटी में थे ठाकुर भक्ति, उनको तो उन्होंने अपने इस पुत्र रत्न को अपने पत्नी को बोले, उनको 6 महीने का था, बोले उनको लेकर के आओ। 4 माड़ बंधा गया, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए जो चढ़ने वाले हैं तो पकड़ के चढ़ लेते नहीं, ठाकुर जब चढ़ाते हैं बांधा जाता है, 4 माड़ बिल्कुल बंद जिसके ऊपर उठकर जाते हैं, तो दोबारा सेट किया गया जिसके ऊपर उन्होंने ये अपने इस 6 महीना का सुपुत्र को लेकर के भगवती देवी और उनके सहकारी बंद गए। जैसे जाकर जगन्नाथ जी के चरण में लेटा दिए ये 6 महीना के शिशु को, और जगन्नाथ जी के श्री अंग से श्री हस्त से माला उनके ऊपर आया, माला गिरा, तो सब जो पुजारी पंडा थे सब हरी बोल कहे, बोले बहुत बड़े शुभ शकुन है, जगन्नाथ जी की विशेष कृपा उनको प्राप्त हुआ। तो जगन्नाथ जी के प्रसाद उनके मुंह में दिए और उनको जैसे लेकर आए तो रथ चल पड़ा। तो जगन्नाथ जी अपेक्षा किए थे, कोई समझ नहीं पा रहे थे क्यों रथ रुका रुका, बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब तक उनके भक्त को आशीर्वाद दिए, उनको दर्शन किए, फिर जगन्नाथ जी चले। वही एक बहुत बड़ी प्रमाण था कि जगन्नाथ जी की विशेष कृपा पात्र है। पद्म पुराण में इसे वर्णन आता है कि ये जो 4 ही संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है, प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय, उसमें भगवत तत्व को तो व्याख्या और प्रचार करते हैं, लेकिन शुद्ध तत्व इसमें नहीं है। तो इसमें कहा गया कि एक आचार्य होंगे उत्कले पुरुषोत्तमे, जो इस 4 ही संप्रदाय का सार को लेकर के पूर्ण शुद्ध तत्व प्रकाश करेंगे, प्रचार करेंगे। तो कई महानुभव उनको श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, लेकिन कई कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने पुरी में रह करके जो ने लीला किए, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन दिए, वो हो सकता है। लेकिन जो भी हो, महाप्रभु के जो भेदाभेद अचिंत्य भेदाभेद दर्शन, उनको हमारे पास कौन लाया है ना, इस जगत में कौन लाया? सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने लाए। भक्ति विनोद ठाकुर जो कुछ प्रयास किए थे, जो उन्होंने रचना किए, वो तो वहीं रह जाता, उसको नाना प्रकार से पूरी दुनिया के सामने लाने का एकमात्र श्रेय सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जाता है। उन्होंने जन्म से अत्यंत विद्वान बालक थे, 5 साल के उम्र में उन्होंने भगवद गीता पर दक्षता प्राप्त कर चुके थे, प्रवचन देते थे गीता के ऊपर। 5 साल के उम्र में हम लोग तो एडमिशन करते हैं स्कूल में, ABCD आवाज सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे कोई बद्ध जीव तो थे नहीं, जीव तत्व तो थे नहीं, ये साक्षात महाप्रभु के अपने लोग थे। गोलक वृंदावन में श्री राधा कृष्ण के लीला के सहाय का मंजरी नयन मणि मंजरी थे, तो उन्होंने ठाकुर भक्ति विनोद की प्रार्थना से जगन्नाथ जी कृपा से प्रकट हुए थे इस धरती पर इस शुद्ध भक्ति धर्म को प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने 12 साल तक जो पढ़ाई लिखाई किए थे, उसके बाद में उनको कलकत्ता में भेज दिया गया। 12 साल तक तो उन्होंने कई लेख भी लिख चुके थे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो उनको एक बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त था, भक्ति सिद्धांत, सिद्धांत सरस्वती अवार्ड, भक्ति सिद्धांत अवार्ड, सिद्धांत सरस्वती उपाधि प्राप्त था। उन्होंने कलकत्ता में जाकर के यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुए थे, तो उनके विशेष योग्यता को देख करके तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट में बंगाल के जो गवर्नर थे आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने उनके योग्यता उनके विद्वता को देख करके उनको बोले थे कि आप एचओडी बन जाओ वहां के, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, और हमेशा उनको प्रार्थना करते रहे गवर्नर साहब अपने ओर से। लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल छोड़, कॉलेज छोड़ दिए, पढ़ाई नहीं किए। उनको रिक्वेस्ट भेजे कि क्यों नहीं छोड़ दिए, उनके पिताजी की बोले बोलो यंग लड़का कॉलेज छोड़ के चला जा रहा, पढ़ नहीं रहा है। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि आकाश के तारा गिनूं और इसे ये सब करूं, ये सब काम के लिए मैं नहीं आया, मेरे कुछ दूसरे काम के लिए आया हूं। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूं तो आप लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे इस दुनिया के काम करने के लिए, मैं इसके लिए नहीं आया, फिर मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करो वो करो ये सब काम, ये सब काम के लिए नहीं आया। जिस उच्च डिग्री, जिस सम्मान, जिस बड़पन, जिस पोस्ट को पाने के लिए आजकल के लाखों लाखों संख्या में नवयुवक मर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, तभी जमाने में पूरे गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ा था, वो एप्लीकेशन नहीं दे रहे थे, उनकी तरफ से एप्लीकेशन आया था, रिक्वेस्ट आया। और जब तक भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद धराधाम ने तभी तक उन्होंने अपेक्षा करते थे शायद ही कभी आ जाए, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार किया उसको। पढ़ाई छोड़ करके घर में आकर के अपने पिताश्री के साथ रहे और उनके साथ शास्त्र चर्चा, कहीं सत्संग में जाते थे। पिताजी कहन पर उन्होंने एक राज स्टेट में एक राजा के घर में एक कार्यभार स्वीकार किए थे, जो प्रिंस था राजकुमार, उनको पढ़ा रहे थे, उनके ट्यूटर के रूप में रहे, और राजा ने उनको बहुत भारी मेंटेनेंस वेतन देकर उन्हें रखा था। लेकिन उन्होंने वहाँ राजा के हिसाब से कुछ लेख भी लिखे, कुछ बड़े बड़े काम किए, लेकिन जो राजकुमार था, प्रिंस था, बहुत बड़े योग्यता हुआ उनसे उनसे पढ़ करके, लेकिन उनका अंदर वैराग्य भावना आया, वो भी गृह त्याग करने के लिए जब मनस्थ किया तो राजा रानी चिंतित हो गए, बोली तो बाबा जी हो जाएगा। तो उन्होंने कंसल्ट किए ठाकुर भक्ति विनोद से, फिर उन्होंने सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने आ गए, बोले नहीं मुझे अभी यहाँ नहीं रहना चाहिए। यद्यपि राजा ने उनके तरफ से घोषणा किया था कि जब तक आप रहेंगे तब तक मैं फुल पेंशन फुल सैलरी आपको देते रहूंगा, लेकिन उन्होंने लिए नहीं, बोले नहीं मैं क्यों लूंगा। तो उन्होंने आ करके जब पहुंचे केदारनाथ दत्त, उनको भक्तिनाथ ठाकुर उनको बोले कुछ तो करना है, तभी बोले कि मैंने अभी गौरांग महाप्रभु के स्थान को ढूंढ चुके हैं। ठाकुर भक्ति विनोद ने हमको दो विशेष दान दिए हैं, एक तो इस हम लोग का सामने जगत के सामने महाप्रभु के असली जन्म स्थान जो जोगपीठ वो नहीं था, ये भक्ति विनोद ठाकुर ढूंढ करके सर्टिफाई किए श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज से, तो हमको दिए जो मायापुर और जोगपीठ जो है वो पहले नहीं था, आज भी डुप्लीकेट जोगपीठ नगरद्वीप में है, लोग उनको मानते हैं, लेकिन ये जो असली स्थिति है भक्ति विनोद ठाकुर का, ये एक देन था गौर आविर्भाव स्थली। और उसके साथ साथ दूसरा महान देन इस धरती को ठाकुर भक्ति विनोद का जो था, वो था उनके सुपुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। वो ना होते तो गौरवाणी को प्रचार कौन करता, महाप्रभु के टीचिंग्स लुप्त हो जाता। तो सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने पिताजी के इच्छा को पूर्ण करने के लिए, इस शुद्ध भक्ति के प्रचार करने के लिए, उन्होंने जोगपीठ से थोड़े आगे जहाँ पर तभी तो मठ था नहीं, जहाँ पर चंद्रशेखर भवन जो चैतन्य मठ है दी ओरिजिनल चैतन्य मठ है, वहां पर जाकर के कुटिया बना करके साधना किए। प्रचार से पहले 100 करोड़ नाम के अनुष्ठान किए, 100 करोड़ सप्तकोटि नाम जप का, और लगभग 9 साल से अधिक लगा उनको। बहुत कुछ तपस्या किए थे, कठिन तपस्या करके। आप जाएंगे तो उनकी तपस्या स्थली, उनके खाने के भोजन के एक पत्थर के ऊपर डालकर खाते थे, एक ही आइटम जो जुहा से हाथ से भी नहीं खाते थे उन्होंने, स्वान मुद्रा में। इतने कठिन तपस्या करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा, पंचतत्व का उनको साक्षात्कार हुआ था, तब उन्होंने प्रचार शुरू किए। फर्स्ट गौड़िया मठ वहीं स्थापना किए, गांधर्वी का गिरिधारी वो मठ है प्रथम गौड़िया मठ। और उन्होंने तभी जवान ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में उन्होंने सबसे पहले प्रचार के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापना किए थे, पुस्तक प्रचार शुरू किए, और उनको नाम दिए बृहत मृदंग। बोले हम लोग कीर्तन करके मृदंग पिट के जाते हैं, थोड़े बहुत लोग सुनते हैं, वो भी साउंड सिस्टम लगाना पड़ता है आजकल, नहीं तो कौन सुनते, तभी तो एम्पलीफायर सिस्टम नहीं था। तो बोले असली कीर्तन है इस भगवत लीला रूपी ग्रंथ को अगर प्रचार किया जाए, इसलिए बृहत मृदंग है। तो उसको प्रकाशन और सुप्रचारण, ये है भगवान के वास्तविक कीर्तन, भगवान के लीला ग्रंथ के प्रकाशन और उनके प्रचारण, ये दोनों क्रिया को उन्होंने साक्षात्कार किए। तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्थापना किए, तभी जमाने में जो पुराना, तो स्थापना करके ग्रंथ प्रकाश और प्रसार के लिए उन्होंने पूर्ण प्रयास किए थे। और उन्होंने ऐसे अकेले सिंगल हैंडेडली पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर, विशेष करके बंगाल और कलकत्ता इस स्टेट में घूम करके, अपसिद्धांत धांत हारिणे, जो महाप्रभु के शिक्षा के जो विरोध है, जो अपसिद्धांत है, उसको बड़े कड़ी समालोचना करके, विरुद्ध करके उनको परास्त किए। थोड़ा और आगे आगे आ जाए, पीछे जाए, बैठने के जाए, मुझे एडजस्ट हो जाए थोड़ा। तो ऐसे विशेष विद्वान प्रचारक थे, तभी जमाने में जितने अपने आप को समझते थे कि मैं कुछ पढ़े लिखे हूं, जो विद्वान समझते थे अपना, जो यंग लड़के यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, और जो बड़े बड़े टोल से संस्कृत से व्याकरण से कोई शास्त्रीय डिग्री प्राप्त करते थे, विद्वान मानते थे, उनको चैलेंज किए, वो लोग आते थे उनसे मिलने के लिए। तो कोई ऐसा भारी विद्वान बालक नहीं था जो उनके पास आया और वो सब चाहते थे कि हम इतने होनहार है डिबेट में, वो बाबा जी क्या कहेगा, वो चाहते थे उनको परास्त करने के लिए। वो आ करके बहुत योग्य स्टूडेंट थे, यंग थे, सब युवक थे, और ना अपने पूरी तैयारी के साथ आते थे, और आकर उनके साथ जब डिबेट शुरू करते थे, अपने मतामत रखते थे, विद इन नो टाइम, कुछ कम समय में केवल हार नहीं जाते थे उनके युक्ति से, और बाध्य होते थे उनके शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। एक तो हार मानते थे, दूसरा शरण भी लेते थे उनका। और ऐसे ऐसे लगभग 27 नवयुवक जो तभी जमाने में भारतवर्ष के होनहार विद्वान माने जाते थे, हर शास्त्र में, व्याकरण में, सब में, तो उनको इकट्ठा करके उनको ब्रेन को वाश कर दिए थे बिल्कुल। उन्होंने अपने सब कुछ, क्योंकि जो पढ़ाई में एक्सपर्ट होते हैं ना, उनका सिर्फ भोग सुख में इतना वैराग्य नहीं रहते, सतगुणी हो जाते। इन सतगुणी ये कुछ 25-27 को योग्य व्यक्ति को इकट्ठा करके ऐसे उनको ट्रेनिंग दिए, प्रचार किए कि उन लोग का बिल्कुल धन और शारीरिक सुख के प्रति बिल्कुल रुचि हटा दिया। तो उनको सन्यास दिए, दिलाए, ब्रह्मचर्य व्रत सिखाए, सन्यास दिलाए, और उनको सबसे पहले जो गौड़ीय मठ स्थापना, 64 गौड़ीय मठ भारतवर्ष में स्थापना किए, पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर इन लोगों के सहायता से। वो दुर्दांत ज्ञानी थे, सब एक से बड़े बड़े जो 27 सन्यासी थे महाप्रभु के फास्ट ब्याच में, एक से एक बढ़कर के महा महा विद्वान पुरुष थे। तो उनके जरिए हम पूरे भारतवर्ष में भीषण प्रचार किए और इसी चार संप्रदाय के जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं उनमें से ये सबसे आधुनिक आचार्य थे, जिन्होंने अपने मन में ये कल्पना विचार किए, वो चाहते थे, उनकी इच्छा था कि ये शुद्ध भक्ति की शिक्षा महाप्रभु के वाणी के प्रचार केवल भारतवर्ष में क्यों, समुद्र पार करके समस्त देश विदेश पूरे विश्व में सभी दलित पतित लोगों के पास पहुंचे, मृक्ष लोगों के पास भी पहुंचे, ये उनका मन में विचार था और उसके लिए अथक प्रयास भी किए थे। उन्होंने स्वयं नहीं जा पाए तो उनके योग्य शिष्यों को कई भेजे, तो उनमें से एक योग्य शिष्य जो हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की शिक्षा से, उन्हीं के आदेश से उनने जा करके अंग्रेजी भाषा में विदेश से अमेरिका में जा करके न्यूयॉर्क सिटी में इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संस्था का स्थापना किए और उन्हीं के कृपा और उन्हीं के आश्वासन से आज पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति के प्रचार, जहां भी देखो कृष्ण कीर्तन, कृष्ण विग्रह के दर्शन, कृष्ण प्रसाद, भक्त संग, ग्रंथ, ये सब ने तो कहां मिलता, बुक्स, चैतन्य चरितामृत बुक भक्ति विनोद ठाकुर को तो मिला ही नहीं, ढूंढते ढूंढते उन्होंने कहीं मैन्युस्क्रिप्ट था पोथी में लिखा हुआ उसको कॉपी कर लाकर पढ़े, कितने हम लोग तो उस बोलेंगे नहीं हम पढ़ नहीं सकते, हमारे पास घर में लाकर होम डिलीवरी बुक दे देते हैं फ्री डिस्काउंट रेट में, तभी वहां नहीं पढ़ते हैं, ठीक है मिला मुझे गिफ्ट में लेकिन रखे हैं पढ़ेंगे, अब पढ़ने जमाना गुजर जाता है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार प्रयास करके पढ़े, आज इतने जो सुलभ कर दिया गया इस ग्रंथ को, इस महान ग्रंथ को इतने सुलभ कर दिया गया, उसके पीछे उन्हीं के विचार और उन्हीं के सपना था जिनको साकार किए। तो इसलिए हमारे आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी हमेशा कहते थे कि जो कुछ मेरा सफल था इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा है, ये खोल करके बोलते थे उन्होंने। और सचमुच उन्होंने जब पहली बार उनको मिले 1922 कलकत्ता उल्टे डंगा में पहली बार जो उनको भेंट किए, पहली बार ही उनको समझ लिए थे उन्होंने, उनके अंदर क्षमता था, कोई यंग युवक को देख करके समझ लेते थे, उनके आत्मा को देखते कि उसके अंदर कुछ शक्ति कुछ कर पाएगा, देख करके उन्हें सीधा आदेश दिए, ना जान ना पहचान कुछ था, बोले आप अंग्रेजी भाषा में विदेश में जाकर प्रचार करो ये ग्रंथ। तब वो प्रभुपाद थे, अभय बाबू थे, अभय बाबू सोचने लगे ये क्या है बाबा जी, मुझे पहचान कुछ नहीं, पहली बार बोलते ऑर्डर दे देते ये करो। तो उन्होंने भी स्कॉटिश कॉलेज के स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, उन्होंने बोले कि ये बाबा जी क्या मुझे बताएगा, मैं ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का। तो उन्होंने उनको बोले कि अभी तो हमारा देश पराधीन है, हमारा बात कौन सुनेगा, आजाद हिंद फौज में उन्होंने शामिल हो रहे थे तभी अभय बाबू, लेकिन उनकी आइडिया को उनके इस युक्ति को नारखार कर दिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने, बोले ये सब शारीरिक धर्म ये सब सब बाह्य है, मैं जो कहता हूँ इट्स रिलेटेड टू सोल, ये सब आत्मधर्म की बात है, ये सब कुछ नहीं, उसके लिए कोई देश स्वाधीन पराधीन ये सब कुछ नहीं है। तो भक्ति वेदांत स्वामी का पहली पराजय हुआ था पहले दिन उन्हीं के सामने, तो मान लिए थे, बोले ये तो गुरु जी गुरु है, ये गुरु है मानना पड़ेगा, ये बाकी जैसे बाबा जी नहीं है। उन्होंने बहुत बाबा जी को देखे थे, दाढ़ी वाले चोटी वाले, लेकिन बोले ये ऐसा नहीं है, गरुआ वस्त्र पहनने वाले ऐसे भेष वाले नहीं है, ये इतनी बड़ी योग्य पुरुष है विद्वान पुरुष। तो उन्होंने शुद्ध भक्ति धारा का ना केवल भारतवर्ष में पूरे विश्व में प्रचार का योजना बनाए और उनके अनुयायियों के द्वारा उसको सफल किए, जिसके कारण हम लोग को इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, ये सब उन्हीं का ही प्लान था। तो वही सूत्रधर है पूरे विश्व में इस रूप गोस्वामी के, भगवान की पार्षद है रूप गोस्वामी, डायरेक्ट महाप्रभु के शिष्य है, महाप्रभु उनको साक्षात रूप में शिक्षा दिए थे, रस शिक्षा भक्ति की गुह्य शिक्षा रूप गोस्वामी को दिए थे रूप सनातन को। तो उनके जो सिद्धांत को रूपानुग, इस रूपानुग सिद्धांत को आज इट इज हर प्रकार से प्रचार करने का पूरी श्रेयसी भक्ति सिद्धांत सुश्रुत प्रभुपाद का है। उन्होंने अपने जीवन काल में कठोर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए थे, कठोर तप किए थे और सिंह जैसा गरज गरज करके अपसिद्धांत को परास्त करते थे और अपने भक्ति सिद्धांत को स्थापना करते थे। कोई उनका सामना नहीं कर सकता था फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट में। हमारे संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी कहते हैं, उनके भाषा में बोलते, माई गुरु महाराज इज ए लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया जानते हैं किसको कहते हैं? एक होता है डिक्शनरी, जिसको शब्दकोश कहते हैं। कई शब्द ढूंढते हैं तो शब्दकोश में ढूंढो, उसको डिक्शनरी बोलते हैं। लेकिन ये शब्द तो कुछ आप जितना जानते हैं इतने शब्द है, लेकिन और कई डिक्शनरी होता है, यहाँ के डिक्शनरी, यहाँ के डिक्शनरी, यहाँ कई शब्द के, लेकिन तो सारे शब्द के ऊपर एक और कोश होता है जो विश्वकोश कहते हैं। सारे विश्व के हर प्रकार के शब्द, हर प्रकार के चीज जिसके बारे में जानकारी मिल सकता है उसको क्या कहते हैं? विश्वकोश। उसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया। ये बहुत बड़ा होता है, पूरे विश्व के हर कोई चीज की जानकारी उसे मिल जाए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया, लिविंग एनसाइक्लोपीडिया सिद्धांत सरस्वत। किसी भी विषय में, किसी भी दर्शन में, चाहे पाश्चात्य हो चाहे यहां के हो, किसी भी प्रकार के दर्शन, किसी भी प्रकार के युक्ति, किसी प्रकार के शिक्षा के बारे में, वस्तु के बारे में जानकारी उनको पूछो, धड़क बोलते थे उन्होंने। तो इसलिए लिविंग एनसाइक्लोपीडिया थे उन्होंने। और वो खुद बोलते थे कि ही इज नॉट, इज वैकुंठ पर्सनालिटी, बोले यहाँ के है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। इस प्रकार के गुण, इस प्रकार के स्वभाव, इस प्रकार के आचरण बद्ध जीव का हो नहीं सकता। वो वैकुंठ पार्षद थे, आए थे हम लोग के कल्याण के लिए। उनके पिताजी ने प्रार्थना की थी जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी ने भेजे थे अपने लोगों को, अपने पार्षद को, श्री नयन मणि मंजरी, वो प्रकट होकर के ये सब कर गए। और उन्होंने पूरे भारत में जितने बड़े बड़े शिक्षित, चाहे विदेश के हो, देश के हो, सभी उनके सामने हार मानते थे, उनके समझ के सामने। उन्होंने जो कुछ ग्रंथ लिख गए हैं, तो उनका अंग्रेजी भाषा इतने क्लिष्ट है, विदेशी लोग भी डिक्शनरी लेकर पढ़ते हैं उसको। हम लोग तो क्या है, हम तो ऊपर से ऊपर जाएगा। जो ब्रह्म संहिता बुक है उनको उन्होंने अंग्रेजी में लिखे हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे दांत निकल जाएगा उसको लैंग्वेज को पढ़ने भाषा। तो तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट था, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचते थे इंडियन लोग क्या जानते हैं, ये सब मूर्ख होते हैं, पढ़े लिखे थोड़ी हैं, थोड़ा। लेकिन वो जब उनके इंग्लिश पढ़ते थे बोलते बाप रे बाप, उन लोग को समझ नहीं आता था और उनको विदेश नहीं गए थे। लेकिन इसीलिए उनने क्लिष्ट भाषा में लिखे, क्योंकि तभी उनके समय में हमारे भारतवर्ष ब्रिटिशर्स के द्वारा शासित होता था। ब्रिटिश तो इसीलिए तो हमारा सारे भाषा को अंग्रेजी है जो कुछ बोलते हैं। तो उन्होंने प्रणयन किए थे, तो उन्हीं के भाषा से उनको सिखाए लिख करके। इतने उनके भाषा ज्ञान था और इतने विद्वता था। तो उनके ये दक्षता और पारदर्शिता के कारण उन्होंने जो पूरे विश्व में, विशेषकर भारत में प्रचार किए, और जिन जिन को उन्होंने, जिन जिन महापुरुषों ने उनको साक्षात दर्शन किए, उनको देखे, उनके व्यवहार देखे, वो कोई भी देखे दर्शन किए, उन्होंने यही मानते हैं कि ये तो यहाँ के इसी मृत्यु लोक का नहीं है, वो हो नहीं सकते मृत्यु लोक का। ये वैकुंठ पर्सनालिटी है, वैकुंठ के व्यक्तित्व है, आए हैं किसी, सचमुच थे ही वैकुंठ व्यक्तित्व। उन्होंने इस शिक्षा, वैदिक शिक्षा को बड़े आधुनिक तरीका से, उन्होंने जब उनके जमाने में उनके पास मोटर कार था, पूरे भारतवर्ष में तीन चार था, उनके पास एक था। मोटर कार में चढ़ करके राधा कुंड आए थे, जहां चप्पल पहन के नहीं जाते, सूट पैंट जूता पहन कर आए थे, वो यहां रुके थे। सब बाबा जी लोग आए थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर के बेटा है, भक्ति विनोद ठाकुर के कमल मंजरी के बेटा है, सब जानते थे। भक्ति विनोद ठाकुर को साधारण पुरुष थे नहीं, इतने बोले उनके बेटा है और उनके योग्य पुत्र है। भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं उनको अप्रूव किए थे, वो कुछ सिखाएंगे ये करेंगे, लेकिन वो उनको नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ाने लगे। तो उन्होंने ये सब साधारण सहजियाओं के कठोर विरोध करते थे, जो भक्ति के साधना को डर करके ऐसे ही भगवान के जो विकार है, सात्विक विकार को धारण करके बोलेंगे हम ये सिद्ध हो गए, सिद्ध प्रणाल, उनको सहज या मंद, बोले इतने सहज नहीं है ऐसे को प्राप्त करना, ऐसे को प्राप्त करना सहज नहीं है, हम लोग को कठोर साधन करना पड़ेगा। साधन से धीरे 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 शुद्ध होने के बाद प्रकट होगा, इसको इमिटेशन नहीं कर सकते। ये सब सहज या उनके विरुद्ध थे खूब, तो उनके शिक्षा को उन्होंने अनेक ग्रंथ और अपने शिष्य और शिक्षा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में प्रचार किए। केवल भारतवर्ष नहीं, उनके योग्य शिष्य के द्वारा पूरे विश्व में प्रचार किए थे, और उनके कार्यकलाप, उनके प्रचार, उनके शिक्षा से यही निश्चित किया जाता है कि अगर वो ना होते तहा जाते पूरे विश्व में ये शुद्ध भक्ति को कोई पहचान पाता। रूप गोस्वामी ये शिक्षा गौरवाणी गौरांग महाप्रभु की शिक्षा के बारे में शायद किसी को पता होता होता होता। तो उनके मनोभाव, उनके जो शिक्षा हम लोग के लिए, उनका हम एक बार पढ़ लेना चाहते हैं, समय कम है। ये नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के उपदेश है हम लोग के लिए। कितने उपदेश हैं उनके, अनेक है, लगभग 24 टीचिंग्स है। मैं पढ़ लेता हूँ, सुन लीजिए तो समझ पाएंगे कि उनका विचार, उनके मनोभाव कैसा था। सबसे पहले कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यही गौड़ीय मठ के एकमात्र उपास्य है। वो कहते मठ है क्या, मठ स्थापना के लिए, मठ उसको कहते हैं जहां कुछ स्टूडेंट छात्र इकट्ठा होकर के अपने गुरु अनुगत्य में शास्त्र पढ़ करके आचरण करके अभ्यास करके लोगों को प्रचार करने जाए, ट्रेनिंग सेंटर, ये मठ है। तो हमारा जो उपासना क्या है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ही संकीर्तन धर्म ही हमारा उपास्य धर्म है। विषय विग्रह श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, बोलते भोक्ता तो कृष्ण है, तद अतिरिक्त सभी उनके भोग्य है। कृष्ण के अलावा बाकी सब एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य भोग्य है सब। जो हरि भजन नहीं करते वे सभी निर्बोध और आत्मघाती है, ये मूर्ख है, अपने आत्म को हनन करते हैं। श्री हरिनाम ग्रहण और भगवान के साक्षात्कार दोनों एक ही बात है। बोले भगवान को हम भगवान को दर्शन करने दर्शन करो, दर्शन प्रसन्न कुछ नहीं, नाम में रुचि बढ़ाओ, नाम करो, यही है भगवान के दर्शन नाम के माध्यम से। जो पंच मिश्रित धर्म का पालन करते हैं ये भगवान की सेवा नहीं करते हैं। पंच धर्म, पंचोपासना, शैव शाक्त सूर्य गाणपत्य और वैष्णव, इस प्रकार बोलते हैं पंच उपासना। भारतवर्ष में बड़े प्रसिद्ध है, बड़े बड़े मान्य गण्य लोग भी इसी को मानते हैं और बोलते हैं कि भगवत उपासना नहीं है वो, भगवान की सेवा नहीं है। मुद्रण यंत्र के स्थापन, प्रिंटिंग प्रेस, भक्ति ग्रंथ के प्रचार और नम हट के प्रचार द्वारा ही श्री मायापुर की, श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की वास्तविक सेवा होगा। महाप्रभु की वास्तविक सेवा इसके द्वारा होगा, बुक प्रिंटिंग एंड बुक सेलिंग और श्री नाम हट के प्रचार, नाम के प्रचार, यही वास्तविक भगवान महाप्रभु की सेवा। हम सत्कर्मी कुकर्मी अथवा ज्ञानी अज्ञानी नहीं है, हम तो अकैदव अकैतव हरिजनों के पाद त्राण वाहक कीर्तन या सदा हरि मंत्र में दीक्षित है। बोले हमको कोई सत्कर्म करी सज्जन दुर्जन अकर्मी कुकर्मी ज्ञानी ध्यानी नहीं बनना चाहिए, हम क्या है भगवान के निजजन हरिजन के उनके चरण के धूल उनके शरण त्राण के बाहक कीर्तन या सदा हरि मंत्र में दीक्षित है। बोले हरि कीर्तन करना हमारा यही उपासना है। केवल आचार रहित प्रचार कर्म अंग के अंतर्गत है। जो प्रीचिंग कर रहे हैं खूब लेकिन आचरण नहीं करते हैं, बोलते हैं ये भी कर्म कांड है, ये वक्त नहीं। पर स्वभाव की निंदा ना करके आत्म संशोधन करना चाहिए, यही मेरा उपदेश है। किसी का क्रिटिसाइज ना करके स्वयं का क्रिटिसाइज करो और स्वयं को परिवर्तन करो संशोधन करो। माथुर विरह कातर ब्रजवासियों की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। यदि हम श्रेय पथ चाहते हैं तो असंख्य जनमत का परित्याग करके भी श्रोत वाणी का ही श्रवण करना चाहिए। बोले सचमुच कल्याण चाहते हैं श्रेय चाहते हैं तो पब्लिक के ओपिनियन क्या है उसको मत मानो, क्योंकि जनसाधारण नहीं जानते हैं। तो इसी कहते हैं यदि हम श्रेय पथ चाहते हैं तो असंख्य जनमत का परित्याग करके भी श्रोत वाणी की ही श्रवण करना चाहिए। असंख्य जनमत, अभी कोई फिल्म स्टार आ जाए देखना, असंख्य लोग इकट्ठा हो जाएंगे उनको देखने के लिए। हम भी उसके शरीर इतने लोग जाते हैं, बोले नहीं जनमत नहीं जानता, इसके द्वारा श्रेय निर्धारण नहीं किया जा सकता। जो स्रोत पथ मतलब शास्त्र वाणी को श्रवण करना चाहिए। पशु पक्षी कीट पतंग प्रभृति लख्य लख्य जोनियों में रहना अच्छा भी है, तथापि कपटता का आश्रय करना उचित नहीं है, निष्कपट व्यक्ति का मंगल होता है। बोलते कीड़े मकड़े बन जाओ लेकिन कपटी मत बनो। सरलता का नामांतर ही वैष्णवता है, सरल होना अति आवश्यक है वैष्णव बनने के लिए। सरलता की नामांतर ही वैष्णवता है। परमहंस वैष्णव के दास सरल होते हैं इसलिए वही सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने अपने जमाने में ये जातिवाद को खूब विरोध किए थे, ब्राह्मण और वैष्णव में खूब भारी वाद विवाद हुआ था विशेषकर उनके जमाने। तो उनके लिए तो इविन वृंदावन में ऐसे गोस्वामी मठ के गोस्वामी लोग उनको बंद कर दे, दरवाजा दर्शन नहीं देते थे, बहुत बड़ी षड्यंत्र रचा गया था उनके विरुद्ध में, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो जीवों के विपरीत रुचि को परिवर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ दयालुता का परिचय है। विपरीत रुचि असली रुचि तो होना चाहिए आत्मधर्म में भगवान में, लेकिन सब विपरीत रुचि जो विषय सुख को प्राप्त करना, इस रुचि जहां पर हमें सभी की रुचि है तीस रुचि को परिवर्तन करना, जीवों के विपरीत रुचि को परिवर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ दयालुता का परिचय। बोले वही वास्तविक दयालुता है। महामाया के दुर्ग के बीच से यदि एक जीव की भी रक्षा कर सको तो अनंत कोटि अस्पताल के निर्माण की अपेक्षा उसमें अनंत गुना परोपकार के कार्य होगा, है ना। हम इस जगत में कोई काठ पत्थर के कारीगर होने नहीं आए हैं, हम तो श्री चैतन्य देव की वाणी के ग्राहक मात्र है, वाहक मात्र है। बोले चैतन्य देव की वाणी के वहन करना इसी के लिए आए, कोई और दूसरे इंजीनियर डॉक्टर ये सब बनने के लिए नहीं आए, काठ पत्थर के कारीगर बनने के लिए नहीं आए। हम इस जगत में अधिक दिन नहीं रहेंगे, हरि कीर्तन करते करते हमारा देहपात होने से ही इस देह धारण की सार्थकता होगा। कोई ज्यादा दिन तो रहेगा नहीं, जितने दिन भी रहेंगे तब तक अगर हरि नाम के कीर्तन करते करते हम मर जाएं तब ये देह धारण की सफलता होगा। श्री चैतन्य देव के मनोभीष्ट संस्थापक श्री रूप गोस्वामी जी के पाद पद्म की धूल ही हमारे जीवन की एकमात्र आकांक्षा वस्तु है, जो आज हम भजन गाए, सिर्फ मंजरी पद सही मोर संपद सही मोर भजन पूजन सही मोर धर्म कर्म सही मेरे वेदर धर्म सब कुछ उसी को ही माने, उसके बिना और कुछ नहीं सब, इसी को ही बात कहते हैं। श्री चैतन्य देव के मनोभीष्ट संस्थापक श्री रूप गोस्वामी के पाद पद्म की धूल ही हमारे जीवन की एकमात्र आकांक्षा की वस्तु है। जीवन में अगर एकमात्र अभिलाषा हो रूप गोस्वामी की शिक्षा को पालन करना, हमारा निरपेक्ष सत्य भाषण अन्य मनुष्य को अप्रीतिकर होगा, इस भय से यदि सत्य कथन का परित्याग करो तो मेरा श्रोत पथ का परित्याग कर अश्रोत पथ का ग्रहण करना होगा। मैं अवैदिक नास्तिक हो गया, सत्य स्वरूप भगवान में मेरा विश्वास नहीं रहा। बोलते हैं कि अगर मैं ये बात कह दूं तो बुरा मानेंगे लोग, इसलिए नहीं कहूं, उनके बात को कहूंगा। बोले नहीं, नहीं कहना तो चुप रहो, कहना है तो सत्य कहो। अच्छा तो नहीं, निर्गुण वस्तु का दर्शन करने के लिए कोई भी दूसरा पथ नहीं, एकमात्र कान को छोड़ करके, है ना। नहीं इसलिए पश्यंती करण चक्षुषा, जो सब विशेष दिव्य गुण को धारण करने वाले वस्तु हैं, इसको निर्गुण वस्तु कहते हैं, उनको दर्शन तक केवल कान से हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। जहां हरि कथा होती है वहीं तीर्थ है, कीर्तन के माध्यम से श्रवण होता है और स्मरण का सुयोग प्राप्त होता है, उसी समय अष्टकालीय लीला सेवा की अनुभूति संभव है। बोल जे हरि नाम करते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं, इसी में रमते हैं, वही अष्टकालीय सेवा की अनुभूति। श्री कृष्ण नामोच्चारण का ही भक्ति समझना चाहिए, भगवान के नाम जप ही, नाम उच्चारण ही भक्ति है। जो प्रतिदिन हरि नाम ग्रहण करते हैं उनकी दिव्य ही वस्तु को भगवान ग्रहण करते हैं। अपराधों से दूर रह करके से हरिनाम ग्रहण की इच्छा करके निरंतर हरिनाम करते रहने से अपराध दूर होंगे और शुद्ध हरिनाम उदित होंगे। बोले अपराध से डरना नहीं, अपराध से डर करके नाम छोड़ देना नहीं, डरना है, नाम करना है, निरंतर नाम लेने से फिर हमारा हृदय शुद्ध होता है। श्री नाम करते समय जड़ चिंता उदित होने पर श्री नाम ग्रहण में शिथिलता नहीं करना चाहिए। बोले नाम जब करते हैं नाना प्रकार के दूसरे भौतिक चिंता बोले आएगा, उसके लिए हमको डरना नहीं चाहिए। श्री नाम ग्रहण बंद नहीं करना चाहिए, मेरा सही जप नहीं होता, बेटर लिप दी चैंटिंग। बोले नहीं, जड़ चिंता उदित होगा तो नाम ग्रहण छोड़ना नहीं चाहिए। श्री नाम ग्रहण के गौण फल स्वरूप वृथा जड़ चिंता क्रमश दूर हो जाएगी। बोले ये सब साइड इफेक्ट में दूर हो जाएगा अपने आप, इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत आग्रह के साथ तन मन वचन से श्री नाम की सेवा करने से ही श्री नामी प्रभु अपना परम मंगलमय अप्राकृत स्वरूप का दर्शन कराते हैं। श्री नाम ग्रहण करते करते अनर्थ दूर होने पर श्री नाम से ही रूप गुण लीला की अपने आप स्फूर्ति होती है। जो सिखाते हैं नहीं, अरे क्या करते रहते हैं, आओ हमको सिद्ध स्वरूप अभी दे देते हैं, अभी बन जाओगे ऐसा देखोगे क्या है, अभी गोलक वृंदावन ये रूप हो गया, आप मानो आप ही बन गए। बोले ऐसे नहीं होता, नाम ग्रहण करते करते अनर्थ निवृत्ति होगा, आप शुद्ध हो गए और नाम के द्वारा ही नामी आपके स्वरूप को प्रकट कराएंगे, गुण रूप लीला सब उन्हीं से ही प्रकट होगा। और उसको छोड़ करके दूसरी प्रकार से उपाय नहीं। तो इस प्रकार के ये सब सिद्धांत है, भक्ति सिद्धांत, इसलिए उनका नाम है इस भक्ति सिद्धांत। उनको यद्यपि श्री हरि नाम आदि के दीक्षा तो अपने पिताश्री ने दिए थे स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर ने, लेकिन फिर भी बोले कि मैं तो शिक्षा और हरि नाम तो दिया, लेकिन फिर भी आप कोई गुरु ग्रहण करना चाहिए। बोले आप है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपके पिता हूं और गुरु होना चाहिए। तो फले फिर कौन, तो उनको गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, वो भी आते थे भक्तिनोद ठाकुर से क्लास सुनने के लिए, वो जानते थे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बहुत बड़े भजनानंदी महात्मा है, तो परम वैरागी थे, लेकिन वो आते थे। ठाकुर भक्ति विनोद जब सर्व स्वानंद सुखद कुंज में रहते थे, कथा करते थे, वहां सुनने के लिए आते थे। तो बोले इन महापुरुष से तू शरण लो, उनके दीक्षा लो। और गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज अनपढ़ है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती पर तो गवर्नर वेट करके बैठा था आशुतोष मुखर्जी, प्लीज कम बी यहाँ कुलपति बनो, और ये अनपढ़। और ठाकुर भक्ति विनोद बोले वही तेरे गुरु होगा। और उनके पास गए विमला प्रसाद, उनका नाम था विमला प्रसाद, उनके पास जाते थे। क्यों आया ना, मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे शिष्य बनाए। है तू इतने पढ़े लिखे उनका लड़का है जिनसे मैं सीखने जाता हूं, मैं तो सीखूं, जाओ जाओ दूर दूर, दूर। बिल्कुल पास में फटक खड़े नहीं करने देते थे, रिक्वेस्ट करते, बोले ना 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 बहुत, बोले पिताजी ने आपके पास भेजे हैं। बोले ठीक है, फिर मैं गौर को पूछूंगा। बोले मेरे ठाकुर गौर को पूछूंगा, वो अगर बोलेगा तो फिर सोचूंगा। ठीक कब पूछेंगे ना, आओ दो चार दिन छोड़ कर पूछता हूँ। उस दिन छोड़ के गए क्या, अरे मैं भूल गया पूछने के लिए, अब जाओ बाद में पूछूंगा तो बताऊंगा। हफ्ता दिन बाद में गए, पूछा, अरे मैं फिर भूल गया। तीसरी बार विमला प्रसाद जाते हैं, अगर वो बोलते हैं, उन्हें बोले ठीक है आप कब पूछेंगे पता नहीं, तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं अभी जहां जलंगी गंगा के मिश्रित है वहां कूद कर जम करके मर जाऊंगा। अच्छा आप मुझे स्वीकार नहीं करते, जीवन से मूल्य क्या, जीवन धारण करने का मतलब क्या है, इस शरीर को जब आपने उपयोगी नहीं समझते हैं आपके सेवा के लिए, यूजलेस, फिर इसको रखूं क्यों, जाऊं गंगा में पात करूं। अरे रुको रुको रुको, तब उनको बुला करके उनके नामकरण किए, बार्षभानवी देवी दैत्य दास, ये उनका दीक्षा नाम था। क्या नाम था, बार्षभानवी देवी कौन है, सीताधारणी। उनके दैत्य कौन है, श्याम सुंदर, दैत्य माने पति है ना, ने उनके दास इनडायरेक्टली देते हैं, श्री वार्षभानवी देवी दैत्य दास, ये नामकरण किए थे। और उनको अपने गुरुजी ने जो शिक्षा दिए, परम वैरागी थे, बहुत बड़े वैरागी भजनानंदी, बोले कि वार्षभानवी देवी दैत्य प्रभु कभी कलकत्ता नहीं जाना, कभी कलकत्ता नहीं जाना, और ये कली की राजधानी है, ये यहां मत जाना, धाम में रह के भजन करना। और इस शिक्षा को पाकर कलकत्ता में ही रहे, सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उनके हेडक्वार्टर कहाँ बनाए, कलकत्ता ही बनाए। लोग पूछे क्या गुरुजी ने तो ऐसे बोले, बोले तुम मूर्ख समझ थोड़ी सकता, गुरुजी ने क्या मुझे बोले ये उनका समझता, तो उनकी भाषा को ही समझते हैं। तभी जमाने में और एक बड़े भजनानंदी महात्मा थे, श्री बंसीदास बाबा जी महाराज, महा वैरागी संत थे, इसी गौड़ीय परंपरा में होकर भी इतने परम वैरागी थे बाबा जी महाराज। तो उन्होंने जब सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को देखते थे, गोपी 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 बोलते थे, बोले ये तो गोपी है, वो समझ लेते थे। और बाबा जी महाराज, बंसीदास महाराज, बाबा जी महाराज अपने डीटी गोनिता से बातचीत करते थे अपने अकेले में, और वो पहुंचे हुए महात्मा, बाकी कुछ भी नहीं, उन्हीं को मानते थे, बोले हाँ यही गोपी है, ये गोपी है। भले बाबा जी बेस भेक में नहीं, बड़े आसमान रहते हैं, मटर चढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये गोपी है, वो मानते थे, वो भी उनको पहचानते थे, जो इस धर्म है वो इनको पहचान सकता है, नहीं तो कौन पहचान सकता उनको। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा, भक्ति के सिद्धांत को शिक्षा करके, और गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के जो उनके मनोभीष्ट है, वो बोलते थे कि बोले मेरे गुरु महाराज सर्वज्ञ शिरोमणि है। अरे तो नाम भी लिख नहीं सकते उनका, फिर भी क्या, नाम लिखना तो ऐसे भौतिक शिक्षा है, क्योंकि खुद ही भौतिक शिक्षा छोड़ दिए थे, स्कूल छोड़ दिए थे उन्होंने पढ़ाई, बोले इस पढ़ाई पढ़ने के लिए हम नहीं आए हैं, इस पढ़ाई पढ़ेंगे तो कोई डिग्री मिलेगा और सब फंसेंगे उसमें, तो इसलिए पढ़ाई छोड़ करके, कॉलेज स्टडीज छोड़ करके तो उन्होंने जो किए, बोले हम जिसको छोड़ते हैं उसको पढ़ेंगे क्यों, तो मानते थे। तो इस प्रकार श्री सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी विशेष करके हम लोग के लिए, हम जो डिबोटी सब इस्कन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के अनुयायीगण है, हम लोग के लिए उनका विशेष वरदान है हमारे आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनको उन्होंने चुने और उनको उन्होंने बनाए और उनको आदेश दे करके प्रेरित करके ये पूरा विश्वव्यापी संस्था बनाए कृष्ण भक्ति के प्रचार का, जिनके फलस्वरूप हम लोग का ये थोड़ा बहुत कल्याण के मार्ग में हम अभ्यास कर पाते हैं, अब तो किए नहीं प्रयास कर रहे हैं, ये सब उन्हीं के ही योजना उनके कृपा का परिणाम है। तो आज उनके शुभ आविर्भाव तिथि है, इसलिए हमारा ये धर्म बनता है कि ऐसे वैकुंठ पुरुष, ऐसे महापुरुष, इतने कल्याण गुणगण आलय को हम उनके श्री चरण में प्रार्थना करेंगे कि इनके कृपा प्राप्त हो, और क्या कर सकते हैं, हम तो उनके तो वैकुंठ वाले, हम तो यहाँ के हैं, लेकिन उनके कृपा आशीर्वाद होगा ताकि उनके भक्ति के सिद्धांत, उनके शिक्षा के चिन्ह पर हम अगर प्रयास करें, वो भी प्रयास करने के लिए उन्हीं की कृपा चाहिए, उनके कृपा शक्ति से अगर हम उनके दी हुई भक्ति नियम के अनुसार अगर हम अभ्यास भजन कर पाए तो फिर इस तुच्छ जीवन का कुछ सफलता प्राप्त हो सकता है। तो ही उनके चरण में प्रार्थना करते श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे। तो आज ऐसे क्योंकि सीधा हमारे गुरु परंपरा के अब परात्पर गुरु है, क्योंकि सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के शिष्य हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और उनके शिष्य जो हैं तो हम उनके शिष्य गण में हैं, तो हमारे लिए तो परम गुरु हुए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और परात्पर गुरु हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, हमारे लिए तीन पीढ़ी अभी तक है, तो हमारे लिए सब तक वही पीढ़ी है, तो इसलिए हमारे खास परंपरा में है, प्रतिदिन उनको प्रणाम करना चाहिए, वो करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जहाँ भी मुख्य अपने प्रतिष्ठा किए हैं तो वहाँ अपना और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का विग्रह रखें, बोले एटलीस्ट यही पीढ़ी तक हम जाना चाहिए। जब कभी हम श्राद्धा आदि करते हैं तो तीन पीढ़ियों का नाम लेना पड़ता है, याद नहीं तो फोन करके पूछते हैं, पापा याद है आपके पापा का, उनके पापा का क्या नाम था, हमारा तो याद ही नहीं रहता पूछ करके, क्योंकि यही विधि है, तीन पुरुष तक काउंट किया जाता है, तो हमारे तीन पुरुष हैं, तीसरी पीढ़ी में सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद आते हैं, तो हम उन्हीं के डायरेक्ट ब्रीड में हैं, उन्हीं के लिनेज में हैं, तो हमको बड़े गर्व अनुभव करना चाहिए, जो इतने बड़े वैकुंठ नित्य पुरुष, नित्य सिद्ध पुरुष के हम शिक्षा के अनुयायी हैं, उनके प्रपुत्र हैं, तो ये बड़ा हमारा गर्व होना चाहिए। तो सभी आज इसे उनके शुभ आविर्भाव दिन में संकल्प लेना चाहिए कि जो भी हमारा कुछ शक्ति सामर्थ्य है काम अन्य वाक्य से, उनके शिक्षा में अड़िग रहे, उनके शिक्षा को पालन करने के अटल रहे और उनके शिक्षा के आधार पर अपने जीवन निर्वाह करे, यही हमारे जीवन की परम श्रेष्ठ सार्थकता सफलता होगा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की जय हो।